पिता का स्पर्श। आस्था उससे जब भी बातें करती तो वो काफी ज्यादा एटीट्यूड दिखाया करती है, और उसका ये एटीट्यूड भला अरमान कैसे बर्दाश्त करता। अब आगे, अब आस्था के चेहरे पर आंसू, दर्द और तड़प देखकर उसके दिल को एक अलग ही तरह का सुकून सा मिल रहा था, क्योंकि अरमान को तो आदत ही नहीं थी कि कोई उसके सामने जरा सी भी ऊंची आवाज में बात करे। अब आस्था की दर्द भरी आवाज सुनकर अरमान, जो कि अभी तक अपनी तीखी नजरों से आस्था को देख रहा था और जज कर रहा था, उसे अचानक अपने मन में कुछ अजीब सा लगने लगता है। शायद ये उसके दिल की फीलिंग थी जो आस्था को रोते हुए देखकर बाहर आ रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी कुछ देर पहले आस्था को रोते और बिलकते देखकर वो एंजॉय कर रहा था, लेकिन अभी उसकी आंखों में आंसू देखकर उसके दिल में इतनी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है। फिलहाल उसने जल्दी ही अपनी सोच को झटका और आस्था को घूरते हुए गहरी आवाज़ में उसे चिढ़कर कहा, बस बस, कितना इरिटेटिंग कर रही हो, अब इस तरह रोने का ड्रामा बंद करो, और तुम्हारा बेटा इस वक्त वहाँ है, उस तरफ देखो, उधर सोया हुआ है। आस्था अरमान की ये बात सुनकर एकदम से चौंक जाती हैं, और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं तो अरमान के बेड के ठीक बराबर में एक छोटा सा झूला बड़े ही करीने से तैयार किया गया था और उसे चारों तरफ से ढक रखा था, जिसमें अंश आराम से सोया हुआ था। ये देखते ही आस्था पूरी तरह झल्ला गई और अरमान से बोली, ये क्या है, आपने मेरे बेटे को इस तरह झूले में बंद क्यों कर रखा है? तब अरमान ने तमतमाते हुए उसे जवाब दिया, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह इरिटेटिंग है, तुम जानती हो तुम्हारे जाने के बाद इसने क्या किया, ये घुटनों के बल चलने लगा, मैं जहाँ भी जाता मेरे पीछे पीछे आता, और मैं वॉशरूम भी जाता तो वॉशरूम के दरवाजे पर मुझे मिलता, इसने मुझे परेशान कर दिया था। तो तुम्हें क्या लगता है कि अरमान सिंह हानिया इस तरह से एक बच्चे को बर्दाश्त कर सकता है? इसीलिए मुझे इसे इस तरह से बंद करना पड़ा। लकीली थोड़ी देर बाद ये सो गया, वरना मैं तुम्हें ढूंढने बाहर आने वाला था तुम्हें अच्छा खासा सबक सिखाने के लिए। अरमान की बात सुनकर आस्था का दिमाग भग से उड़ गया। उसे सिचुएशन में सब कुछ बड़ा ही अजीब लगा रहा था, वो काफ़ी डरी हुई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अरमान इस तरह से अंश के साथ रिएक्ट करेगा। उसे लगा था कि अरमान अंश के साथ कंफर्टेबली रहेगा और उसका ध्यान रखेगा, क्योंकि पहले भी अरमान ने अंश का ध्यान कंफर्टेबली रखा था। लेकिन अभी अरमान ने जिस तरह की अजीब बातें कही तो ये सुनकर आस्था एकदम से दंग रह गई और उसके होश उड़ गए। उसे पहले लगा था कि अरमान सिर्फ उसे परेशान करने के लिए ऐसा बोल रहा था, लेकिन अब इस सिचुएशन में आस्था समझ ही नहीं पा रही थी कि वो करे तो करे क्या, कैसे अपने पति की यादों को वापस लाए और उस राजवीर जिंदल को कहाँ ढूंढे। वो कुछ सोच भी नहीं पा रही थी, ना ही समझ पा रही थी। वहीं अंश तो अपने पिता के पास रहकर उनका स्पर्श पाकर सो गया था, आस्था को पता ही नहीं चला। जल्दी से आस्था ने आगे बढ़कर अंश को अपनी गोद में थाम लिया और अरमान को नाराज नजरों से देखते हुए वो तुरंत कमरे से बाहर आ गई। वहीं अरमान आस्था के जाने के बाद अचानक तिरछा सा मुस्कुराया, बेपरवाही से बोलता है, डेविल किंग से पंगा, हा 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 हा, इतना सोचकर वो हंसने लगा था। और अचानक ही वो अपने किंग साइज बेड पर गया, ध्रुव की दी हुई गोली खाई और सुकून से सो गया। वहीं दूसरी ओर अगली सुबह से ही सभी कपल्स एक नए मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार थे। फिलहाल तो सबसे पहले उन्हें जन्माष्टमी का त्यौहार मनाने की तैयारी करनी थी और उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया था कि अब वे अलग अलग ग्रुप में पूरे शहर भर में राजवीर जिंदल को ढूंढने निकलेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने सभी आदमियों को भी एक्टिव कर दिया था, जिनमें उन्होंने मारिया और टाइगर को भी शामिल कर लिया था। हालांकि मारिया और टाइगर दोनों ही इस वक्त अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, क्योंकि अरमान ने जब से टाइगर को मारिया से डिवोर्स लेने के लिए बोला है तब से टाइगर के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला था। न तो वो मारिया को कुछ समझा पाया, न ही उसके साथ इस मामले में सही से बात कर पाया था। भले ही वो मारिया के साथ रहता था, उसे बेहद प्यार करता था, लेकिन अभी तक वो मारिया से अपनी फीलिंग सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाया था। वहीं दूसरी ओर आस्था को अब पता चल चुका था कि टाइगर और मारिया के रिश्ते के लिए अरमान ने क्या डिसीजन लिया है, तो उसने भी मन ही मन ठान लिया था कि वो कुछ न कुछ ऐसा करेगी जिससे अरमान सिंघानिया को इस बात का एहसास हो कि वो किसी शादीशुदा जोड़े को अलग नहीं कर सकते, खासकर तब जब उनका बच्चा इस दुनिया में आने वाला हो। फिलहाल आज आस्था ने मन बना लिया था कि उसे किस तरह से मिस्टर सिंघानिया को काबू में करना है। वहीं दूसरी ओर रौनक मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। आहान उसके करीब बैठा उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे इस सिचुएशन में उसका साथ देना चाहिए। उन दोनों की तूतू मैमे की आवाज़ धीरे धीरे सिंघानिया मेंशन में गूंजने लगती है, क्योंकि रौनक और आहान बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ाई करते थे। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं रहता था कि आसपास कोई उन्हें देख रहा है या नहीं। लेकिन ठीक उसी वक्त अरमान का भी अब नीचे आने का समय हो गया था और बाकी सभी कपल्स ऑलरेडी नीचे आ चुके थे। केवल ऊपर फ्लोर से रौनक और आहान की लड़ाई की आवाज़ जोरों से गूंज रही थी। ये शोर सुनकर दादाजी थोड़ा हैरान और परेशान हो गए और वो चिंतित होकर बोले, अब इस नालायक ने रौनक बिटिया को क्या कर दिया जो रौनक बिटिया को इतना गुस्सा आ रहा है? जरूर इसी नालायक ने कुछ ना कुछ कांड किया होगा। ध्रुव की आंखें दादाजी की बात सुनते ही हैरानी से फैल गई और अगले ही पल वो उनकी बात काटते हुए बोला, पता नहीं दादाजी आप हमेशा लड़कियों का साइड ही क्यों लेते हैं, आहान का साइड क्यों नहीं लेते, जब देखो हमें ही डांटते रहते हैं, कभी अपनी बहुओं को तो कुछ कहते नहीं। वंशिका का चेहरा ध्रुव की बात सुनकर तमतमा गया, वो तुरंत चिढ़ते हुए बोलती है, वाह क्या बात है दादाजी, आप यहाँ आहान को डांट रहे हैं और ध्रुव को बुरा लग रहा है? फिर वो ध्रुव को एकदम से देखकर आईब्रो मटकाते हुए पूछती हैं, और तुम्हें आहान के लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है? हम वंशिका की आवाज़ और अंदाज देखकर ध्रुव जल्दी से बात बदलते हुए एकदम से बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कैजुअल बातें कर रहा हूँ, जब देखो दादाजी या डैडी सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों का ही साइड लेते रहते हैं, लेकिन हम लड़कों का क्या, जब देखो वो आकाश भैया, सुमित भैया या फिर मुझे या आहान को डांटते रहते हैं।
अब तुम ही जरा सोचो, इस वक्त झगड़ा आहान रौनक दोनों का हो रहा है, जबकि रौनक भी बराबरी कर रही है आहान से, लेकिन दादाजी को सिर्फ आहान की ही आवाज सुनाई दे रही है और वे उसी को भला बुरा कह रहे हैं। वंशिका ध्रुव की यह बात सुनकर हल्का मुस्कुरा देती है। उसने चुपके से तुरंत ही रश्मि और राधिका की ओर देखकर कुछ इशारा किया और दोनों ही अब जाकर वहां खड़ी हो गई। वहीं वंशिका ने ध्रुव को देखकर खफा होने का नाटक किया और भोली सी शक्ल बनाकर बोली, ध्रुव आखिर आप कहना क्या चाहते हो? दादाजी पक्षपात करते हैं, यही तुम्हारी सोच है? दादाजी के पास खुद की अक्ल है, वे जो सही है उसे सही बोलते हैं और जो गलत है उसे गलत बोलते हैं। तुम इस तरह से आहान को कैसे डिफेंड कर सकते हो और तुम दादाजी पर पक्षपात का इल्जाम कैसे लगा सकते हो? हम दादाजी वंशिका की सारी बातें सुन चुके थे, वे अब गुस्से से ध्रुव को घूरने लगे। वहीं वंशिका मन ही मन खुश हो रही थी क्योंकि सुबह सुबह दादाजी से ध्रुव को डांट पड़वाने का उसका प्लान पूरा होता नजर आ रहा था। तभी ठीक उसी वक्त दादाजी ध्रुव के सामने आए, जोर से उसके कान खींचते हुए बोले, अच्छा बदमाश, तुझे लगता है मैं पक्षपात करता हूँ तुझमें और बहू में? हाँ, और तू ये बता, तू वंशिका बिटिया को अपने साथ घुमाने के लिए आखिरी बार कब लेकर गया था? हाँ जवाब दे।
ध्रुव दादाजी की बात सुनते ही जल्दी से अपने बाल सहलाते हुए बोलता, ओह दादाजी, आप जानते ही हैं ना कि माहौल कैसा चल रहा है, ऐसे में मैं वंशिका को बाहर कैसे लेकर जा सकता हूँ? तब दादाजी और जोर से उसका कान मरोड़ते हुए कहते हैं, अच्छा जब देखो तू अकेला ही निकल जाता है, कभी सोचा है कि बच्ची घर पर अकेली बोर हो जाती होगी कि चलो इसे भी कहीं घुमा फिरा लाऊं? हाँ, तुझे तो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ अपना काम दिखाई देता है, बच्चे की बोरियत दिखाई नहीं देती। दादाजी ने इस बार मौका मिलते ही ध्रुव पर पूरी भड़ास निकाल दी थी। ध्रुव अब तंग आकर सोचने लगा, झगड़ा तो रौनक और आहान का हो रहा था, बीच में मैं कहां से फंस गया? उसने तिरछी नजरों से वंशिका को नाराजगी से देखा। वहीं वंशिका मासूमियत से पलके झपकाते हुए ध्रुव को देखकर उदास मन से बोली, देखा दादाजी, इन्हें अभी यही लग रहा है कि मैं ही आपको इन्हें डांटने के लिए कहती हूँ, देखो ये मुझे किस तरह से घूर रहे हैं, अब तो ये पक्का मुझ पर चिल्लाएंगे। दादाजी वंशिका की बात सुनकर अगले ही पल जोश में आ गए, वे आवाज ऊंची करते हुए उखड़े अंदाज में बोले, नालायकों, अरमान क्या कम है जो तुम लोग भी उसी के नक्शे कदम पर चल रहे हो? खबरदार, अगर किसी ने भी मेरी बेटियों की आंखों में आंसू लाने की कोशिश की तो तुम लोगों की ऐसी खबर लूंगा कि मार मार कर घर भर में लुढ़कते फिरोगे। इतना कहते हुए दादाजी की नज़र सुमित पर पड़ी, वे उसे घूरते हुए बोले, और ये देखो सांड का सांड हो गया है, इतना बड़ा हो गया है लेकिन इसे आज तक अपनी बीवी को खुश करना नहीं आता, कभी देखा है तुमने अपनी बीवी के लिए कुछ लाते हुए? जब देखो खाली हाथ मेंशन में चला आता है, कभी तो अपनी बीवी के लिए कोई गिफ्ट ले आया कर। नालायक, कम से कम त्योहार पर तो इन बच्चियों के लिए कुछ ले आया करो, शुक्र मनाओ कि ये बच्ची तुम जैसे घोड़े के साथ रह रही हैं। अब जैसे ही दादाजी ने सीधे सीधे नानीमा की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर दिया तो सब लोग उन्हें आश्चर्य से देखने लगे। वहीं नानीमा जो अब तक चुप थीं, दादाजी की बात सुनकर जोरों से हंसने लगीं। अब दादाजी जो पूरी शिद्दत से सुमित, ध्रुव और आकाश को फटकार रहे थे, फिर उन्होंने आसपास का माहौल देखा तो उन्हें रियलाइज हुआ कि अभी अभी वो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे थे। फिलहाल आस्था मुस्कुराते हुए दादाजी का साथ देते हुए बोली, दादाजी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सुमित भैया, ध्रुव भैया और आकाश भैया, आपको कम से कम राधिका दीदी, रश्मि दीदी और वंशिका दीदी का साथ देना चाहिए, आप लोग भी जब देखो अरमान जी की तरह मुंह फुलाए घूमते रहते हैं, कितने दिन हो गए, वैसे भी मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि अपने ही घर में इतनी अनबन रहे। आस्था की बात से सहमत होकर सभी घर वाले मुस्कुरा दिए, लेकिन राधिका सुमित से थोड़ी खींची खींची सी नजर आ रही थी, जिसे आस्था ने साफ साफ नोटिस कर लिया था, मगर फिलहाल सबके सामने उसने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि अगर वो राधिका से उसकी परेशानी की वजह पूछ लेती तो वो सबके सामने थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती और आस्था नहीं चाहती थी कि राधिका किसी भी तरह से अनकंफर्टेबल फील करे। रश्मि हल्का सा मुस्कुराई और दादाजी के पास आकर बोली, दादाजी हमें इस घर में कोई परेशानी नहीं है, हमें तो आप लोगों ने सहारा दिया है, एक परिवार दिया है, इज्जत दी है, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये कहने के बाद रश्मि तुरंत ही दादाजी के गले लग गई और उसकी आंखें भर आईं। वहीं आकाश रश्मि की बातें सुनते ही पूरी तरह से ठिठक गया, उसका दिमाग एकदम से खाली हो गया था और वो हैरान होकर सोचने लगा, मैंने तो रश्मि से कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं की, तो फिर उसकी आंखों में आंसू क्यों हैं? ये सोचते हुए वो एकदम से उलझन में पड़ गया। लेकिन तभी आहान और रौनक की जोरदार आवाजें पूरे मेंशन में गूंजने लगी, जिसे सुनकर सब लोग थोड़ा ठिठक कर परेशान हो गए, क्योंकि एक तो अरमान के आने का समय हो गया था और अगर अरमान ने आहान और रौनक की लड़ाई सुन ली तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब सब कपिल फटाफट आहान के कमरे की ओर जाने लगे, लेकिन जैसे ही वे कमरे में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि कमरे में आहान ने रौनक के बाल पकड़ रखे थे और रौनक ने आहान के बाल खींच रखे थे, दोनों ही किसी एक बात को लेकर जबरदस्त आर्ग्यूमेंट कर रहे थे।